मेरे बहुत बहुत प्रिय साथियों, आप सभी का एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस ऑडियो गाइडेंस में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, और सच पूछिए तो इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को मैंने जानबूझकर चुना है। नो डाउट कि इस मसले को चुनने के पीछे मेरा अपना अनुभव रहा है, और मुझे लगता है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, खासकर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मुझे इसके बारे में कुछ बताना ही चाहिए। दोस्तों, मैंने इस विषय को क्यों चुना, सबसे पहले मैं इस पर बात करता हूं। दरअसल 2009 में जब से मैंने सिविल सर्विस से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, इसके बाद मैं अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर के वहां के जो एग्जीक्यूटिव्स होते थे, वहां के जो नौजवान इंजीनियर्स साथी होते थे या जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते थे, उनकी वर्कशॉप लिया करता था, और वर्कशॉप में मैं उन्हें सफलता के बारे में और जीवन के जो दूसरे मुद्दे होते हैं उनके बारे में बताया करता था। दोस्तों, वहां मेरा एक बड़ा विचित्र सा अनुभव रहा, और वो अनुभव ये कि मैं देखता था कि खासकर जो नौजवान साथी हैं, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे, और ध्यान से सुनने के बाद मुझसे आकर के व्यक्तिगत तौर पर बातचीत भी करते थे, और नो डाउट कि यह एक अच्छी बात थी। लेकिन मित्रों, उसका जो सबसे चिंतित करने वाला पक्ष था वो ये था कि जब भी वो मुझसे मिलते थे, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता था कि उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे नौजवान साथियों की होती थी जो इससे पहले, अभी वो जिस नौकरी में हैं, इससे पहले वे सिविल सर्विस की परीक्षा दे चुके होते थे। उनमें से बहुत से ऐसे होते थे जो प्री क्वालिफाई ही नहीं कर पाते थे, कुछ मेंस तक पहुंच पाते थे, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, और डेफिनेटली ऐसा तो एक भी नहीं होता था जिसने पूरी तरह से क्वालिफाई कर लिया हो और इसके बाद उस सर्विस को छोड़ करके इस प्राइवेट कंपनी की नौकरी ज्वाइन की हो। तो मित्रों, जब मैं उनकी ये बातें सुनता था तो दो अनुभव मुझे होते थे, और सच पूछे तो ये दोनों अनुभव मुझे अंदर से हिलाकर रख देते थे और सोचने के लिए मजबूर भी कर देते थे। पहला अनुभव तो ये कि इनकी नजरों में अभी मेरी जो भी इमेज है, मेरी जो ये बातों को सुन रहे हैं, मेरी ये बातें जो अच्छी लग रही हैं, इसमें सचमुच कितना योगदान मेरी बातों का है और कितना योगदान सिविल सर्विस में मेरी सफलता का है, मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता था। वो इसलिए कि ये जो नौजवान साथी हैं, इन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और अनफॉर्चुनेटली वो उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए। इंजीनियर्स हैं, MBA हैं, और दूसरे ब्रांच से वो सब आए हैं, और आज कंपनियों के अच्छे अच्छे ओहदों पर वो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये मानकर चलता हूं कि उनमें योग्यता तो है, और डेफिनेटली जो ऐसे योग्य स्टूडेंट होते हैं, जब वो तैयारी भी करते हैं तो फिर अनमने भाव से तैयारी नहीं करते, जितना भी बेहतर हो सकता है वो अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि 4 महीने 6 महीने साल भर तैयारी की हो और उसे छोड़ दिया हो, वो तैयारी भी कुछ ना कुछ लंबे वक्त तक तो उन्होंने की ही होगी, मानकर चलिए 2 साल 3 साल और यहां तक कि 4 साल भी। तो उनके पास इस बात का अनुभव है कि सही मायने में सिविल सर्विस की परीक्षा को क्वालिफाई करना कितना कठिन है, इसके अनुभव से वो गुजरे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि वो उन्होंने ये अनुभव लिया और वो उन्होंने मेहनत भी की लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने क्वालिफाई किया, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जो सामने वाला व्यक्ति है उसके प्रति हमारे मन में एक थोड़ा सा सम्मान का भाव आ जाएगा, और ताज्जुब नहीं कि सम्मोहन का भी भाव आ जाए, आप हिप्नोटाइज हो जाए, क्योंकि आपको लगेगा कि यार हमने इतनी मेहनत की और हम सफल नहीं हो पाए और ये व्यक्ति सफल हो गया, यानी कि हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर तो है। तो ये जो तुलना हुई, इस तुलना ने मेरे प्रति उन नौजवान साथियों के मन में एक अतिरिक्त आदर का भाव पैदा कर दिया कह लीजिए, या मेरी क्षमताओं के प्रति, मेरी योग्यताओं के प्रति उनके मन में एक अलग से विश्वास जगा दिया, या हो सकता है कि वो विश्वास थोड़ा सा सुनने के बाद श्रद्धा में भी परिवर्तित हो गया हो। और यदि ऐसा है और फिर वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो यहां सिविल सर्विस की तारीफ है, सच में मैंने जो बातें उनको बताई हैं उसकी तारीफ नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में निश्चित रूप से मैं जो काम कर रहा हूं मुझे उसके बारे में संदेह करना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो उन्हें बताने जा रहा हूं, वो उनके जीवन में कितना फलित होगा, कितना चरितार्थ होगा। ये मेरी पहली चिंता थी। मेरी जो दूसरी चिंता थी दोस्तों, और शायद ये पहली चिंता से ज्यादा बड़ी चिंता थी, और सच पूछिए तो इसे ही मैं अपनी पहली चिंता कहना चाहूंगा, वो ये कि इन सभी स्टूडेंट्स के जवान आंखों में आईएएस बनने के सपने पल रहे थे। और जो आईएएस बनने का सपना होता है फ्रेंड्स, वो इतना मल्टी डायमेंशनल होता है, इतना डायनामिक होता है, और सच पूछे तो इतना खूबसूरत, सुहावना और यूनिक होता है कि फिर उसके सामने दूसरे सारे सपने, चाहे वो इससे कितने भी बड़े, सुहाने और सच में पूछे तो उपयोगी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं बौने से लगने लगते हैं। ये उस समय की हमारी इमेच्योरिटी होती है, यानी कि ये सच ही है, लेकिन उस समय का जो हमारा एक बाल मन है, मैं बाल मन ही कहूंगा, सच पूछे तो हम भले ही थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो बाल ही होता है, क्योंकि जीवन के अनुभव हमारे पास नहीं होते। ना तो आपके पास दूसरे क्षेत्रों के अनुभव है, ना आपके पास सिविल सर्विस के अनुभव है, जो कुछ भी है वो सिर्फ सुनी हुई बातों के अनुभव है या पढ़ी हुई बातों के अनुभव है, जो सच पूछे तो भोगे हुए अनुभव से बहुत अलग होते हैं। तो मेरी जो बड़ी चिंता थी वो ये कि इन सब के दिमाग में सिविल सर्वेंट बनने के सपने पल रहे थे, आंखों में दिन में जागते हुए उन्होंने उन सपनों को न केवल देखा है बल्कि उसे जिया भी है, और नहीं केवल जिया है बल्कि दूसरों ने जीने के लिए मजबूर भी किया है। क्योंकि जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करते हैं, लोग समझने लगते हैं कि यार इसे तो प्री क्वालिफाई कर लिया, ये मेंस भी क्वालिफाई कर सकता है, कर लेगा, और उनका व्यवहार आपके प्रति बदलने लगता है, कहीं ना कहीं वो आपको एक सम्मान की निगाह से देखने लगते हैं। और जब आप इस निगाह को महसूस करते हैं कि नहीं, अब ये निगाहें जो पहले थी अब बेहतर हो गई हैं, मुझे इज्जत देने लगी हैं, मुझे स्वीकार करने लगी हैं, मुझसे प्रेम करने लगी हैं, तो फिर आपके मन में ये डर पैदा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये निगाहें बदल जाएं, निगाहें फिर जाएं, या इन निगाहों में मुझे वो चिकनाई दिखाई न दे जो अभी दिखाई दे रही है, इन निगाहों की चमक धुंधली न पड़ जाए। और एक दिन जब ऐसा आता है कि वो निगाहें सच में बदल चुकी होती हैं, उनकी चमक धूमिल पड़ जाती है, या सच पूछिए तो वो निगाहें कहीं दूसरी ओर जाकर के जम जाती हैं, तो आप कल्पना करके देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त मानसिक विचलन होता होगा। और ये होता है, ऐसा इनके साथ भी हुआ होगा, भले ही किसी को किसी भी स्टेज की सफलता न मिली हो तो भी हुआ होगा, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो उस दौरान यह बात होती ही है कि शायद कहीं बन न जाए, और अगर यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है एजुकेशन का, फिर तो संभावनाएं और ज्यादा लोगों को दिखाई पड़ने लगती हैं। यानी कि सच पूछिए तो इस दौर में जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हम अपना जीवन कम, दूसरों के द्वारा आरोपित जीवन अधिक जीने लगते हैं। दूसरे हमें बताते हैं कि तुम ऐसा जीवन जियो, और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, हम उस जाल में उलझ जाते हैं। एक दिन तो उस जाल की सच्चाई को सामने आना ही होता है फ्रेंड्स, चाहे हम सफल हों या सफल न हो। सफल होते हैं तो यह सच्चाई एक दूसरे रूप में आती है, जो नो डाउट कि इसकी तुलना में तो कम खतरनाक, खतरनाक क्या मतलब, होती ही नहीं। और यदि हम असफल हो जाते हैं तब फिर वो अपने पूरे क्रूर, निर्मम और कुरूपता के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है, और फिर हमें उससे नजर मिलाना पड़ता है, मिलाना ही चाहिए, इसके लिए डरना कैसा। तो उस दौर को इस लोगों ने देखा है, नौजवान लोगों ने देखा है, और अब वो एक दूसरे जीवन को जी रहे हैं। सिविल सर्विस का जीवन इनको नहीं मिला है, अब ये एक इंजीनियर के जीवन को जी रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजमेंट के एक मैनेजर के जीवन को जी रहे हैं, एक अकाउंटेंट के जीवन को जी रहे हैं, या जो भी दायित्व उन्हें सौंपे गए हैं उस दायित्व को ये जी रहे हैं। अब इनके सामने मित्रों सीधे सीधे दो परिस्थितियां हैं, पहला वो जो सपना उन्होंने देखा था, और दूसरा वो जीवन जो वो अभी जी रहे हैं, सच में देख रहे हैं। मित्रों, ये बड़ा मनोविज्ञान है, एक विचित्र किस्म का मनोविज्ञान है कि हर वो चीज जो हमें नहीं मिलती खूबसूरत लगती है, मिलने के बाद सच में पता लगता है कि ये खूबसूरत थी या नहीं थी। तो स्वाभाविक रूप से वो सिविल सर्विस जिसको जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोशिश भी की, वो उनको नहीं मिली है, तो डेफिनेटली जितनी खूबसूरत वो पहले थी अब वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। जो खोया है वो बहुत खूबसूरत है, और जो मिला है जिसे वो जी रहे हैं उसमें उतनी खूबसूरती नहीं है, उसमें खुरदरापन है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये अब जो कुछ भी कर रहे हैं उसे कैसा कर रहे होंगे, जो अभी वो जी रहे हैं उसके साथ उनकी जो अंतरक्रियाएं हैं, उनके जो इंटरेक्शन है, उनका जो व्यवहार है वो कैसा होगा। निश्चित रूप से मित्रों, अगर आपके अंदर बहुत अधिक आंतरिक शक्ति नहीं है तो वह कहीं ना कहीं गुणवत्ता के लिहाज से कमजोर तो पड़ ही जाएगा। तो मुझे खासकर ये अनुभव बहुत दुखदाई और बहुत तकलीफ देह मालूम पड़ते थे दोस्तों, और ये मेरा जो अनुभव था ये कहीं एक दो जगह का अनुभव नहीं था। मैंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें L&T जैसी कंपनी है, लार्सन एंड टोब्रो जैसी कंपनी है, वहां से लेकर के और फिर नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो दूसरी कंपनीज होती हैं वहां तक अपनी बातें पहुंचाई, और हर जगह मुझे कुछ न कुछ ऐसी आंखों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, मुझे लगा कि नहीं, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स से मैं इस मुद्दे को लेकर के भी कुछ बातें करूं, और सच पूछिए तो मैं आज के अपने इस ऑडियो गाइडेंस में इसी पृष्ठभूमि को आधार बना करके आपसे इसके केंद्रीय मुद्दे के बारे में बात करने जा रहा हूं। मित्रों, मेरी आप इस बात को निराशा करने वाला बिल्कुल न समझे, मैं आपको सच पूछे तो निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, वो मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं मैं आपको प्रोत्साहित ही करने जा रहा हूं। लेकिन मेरा ये जो प्रोत्साहन है, सच पूछिए तो मुझे लगता है कि यथार्थ के ज्यादा करीब है। यथार्थ के ज्यादा करीब इसलिए कि एक ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती, या हम जो कल ये मुझसे हो ही नहीं सकती, मैं क्यों नहीं उसके बारे में एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलूं और अपने जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करूं। बस मेरा पर्पस केवल यही बताना है, क्योंकि मैंने मित्रों बहुत से नौजवान साथियों को इस जाल में उलझ करके अपने जीवन की खुशियों को, अपने जीवन की सफलताओं को, अपने जीवन की गुणवत्ताओं को सच पूछिए तो खराब करते हुए देखा है, और इससे मुझे तकलीफ होती है, और उसी को बेस बनाकर आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। हालांकि यह बात नो डाउट कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले अपने स्टूडेंट को ध्यान में रख करके ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन के हमारे जो दूसरे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी इसे बड़ी आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। हो सकता है कि स्थितियां थोड़ी सी दूसरी हैं, प्लेटफॉर्म थोड़े से दूसरे हैं, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो धरातल है, इसकी जो जड़ें हैं वो एक ही हैं, क्योंकि एक ही मनुष्य है जो डॉक्टर भी बन सकता है। डॉक्टर बनने के साथ ही साथ मैंने खुद देखा है, जब हम अमेरिका गए थे, डेट्रॉइट में एक डॉक्टर हैं और बहुत खूबसूरत पेंटर हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, और केवल ये नहीं कि वो बहुत अच्छे चित्रकार हैं, वो बहुत अच्छा सितार भी बजाते हैं, गजब की चीज है। तो एक डॉक्टर भी है, एक पेंटर भी है, एक सितार भी बजाने वाला है, म्यूजिशियन भी है, तो एक ही आदमी कई चीजें कर सकता है। तो मुझे यह लगता है कि जब हम कर सकते हैं, हम क्यों ना उसे पहचान कर उसे करें, बजाय उसके कि जो हम नहीं कर सकते हैं वो हम करने में लगे हैं, और जब एक दिन हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हम ये कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर उसे पूरे अपनी जिंदगी पर आरोपित कर देते हैं, यानी कि हम उससे मुक्ति पा जाते हैं। हमें बहुत सी चीजें जिंदगी में ऐसी करनी पड़ती हैं जिनका कोई रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में नहीं मिलता, वो पूरी तरह से जीरो हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे फिर पकड़ करके पूरी जिंदगी भर चलते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि हम उसको अपनी जिंदगी ही बना लेते हैं और दूसरी चीजें करना ही नहीं चाहते या कर ही नहीं पाते। मित्रों, अंततः यह जीवन तो हमारा है और बहुत 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 अधिक मूल्यवान है, मूल्यवान ही नहीं है बल्कि बहुत 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 अधिक खूबसूरत भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जिंदगी को जीना, इस जिंदगी को संवारना और यह जिंदगी चलती रहे, यह प्रकृति निरंतर गतिशील रहे, उसमें अपना योगदान देना। दैट्स द मेन पर्पज ऑफ आवर लाइफ। उसमें जो हम करते हैं या जो करना चाहते हैं वो उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये जो पूरा का पूरा प्रकृति है, जो पूरा का पूरा विश्व है, एक इतने विराट चित्र की तरह है। मैं इसे एक बहुत बड़े चित्र की तरह, पेंटिंग की तरह मानता हूं, और उसमें हर व्यक्ति एक पेंटर है और उसमें वो अपना थोड़ा सा योगदान देता है, चाहे उसमें एक छोटी सी बिंदी लगाने का ही योगदान क्यों ना हो। और अगर हम उसे खूबसूरत बनाने में अपना एक छोटा सा बिंदु भी लगा देते हैं तो मैं समझता हूं कि हमने अपना दायित्व निभा दिया है। तो दोस्तों, यहां मैं स्पेशली एक पॉइंट को लेकर के आपसे आज चर्चा करना चाह रहा हूं, और वो पॉइंट है खासकर जो हमारे इंडियन फिलॉसफी में कहा गया है, और मुझे लगता है कि शायद इसे बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं गया या समझाया नहीं गया या जो भी आप कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप्स रह गए हैं कहे हुए में और समझने में, और समझने के बाद उसे करने में। वह वाक्य है मित्रों, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका क्या अर्थ है? ब्रह्म का मतलब है मित्रों रचयिता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो धारणा हमारे सामने रखी गई है उसमें इन तीनों को आप जोड़ करके देखिए तो ये पूरे के पूरे प्रकृति का या किसी भी वस्तु का जो विकास होता है, जो उसका पूरा का पूरा सिद्धांत है कि ब्रह्मा जो रचता है, विष्णु जो उसका पालन करता है या विकास करता है, उसे आगे बढ़ाता है, और फिर महेश जो उसका विनाश करता है। दुनिया में सारी चीजें इसी क्रम से चलती हैं, चाहे वो धरती हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो। समय का फर्क हो सकता है कि कोई चीज एक मिनट के अंदर ये तीनों चरण पूरे कर लेती है और किसी को इसे पूरा करने में अरबों वर्ष लग जाते हैं। प्रक्रिया तो यही है। तो जब ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसका जो रियल मतलब होता है वह है कि मैं रचनाकार हूं, मैं रचने वाला हूं। मित्रों, यह बहुत ही संवेदनशील वाक्य है, और मेरी बात को थोड़े से धैर्य और पूरी संवेदना के साथ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सामान्य तौर पर आपको इस तरह के बहुत से वाक्य, जो इंस्पिरेशनल जो लेक्चर्स होते हैं, जो जिसे आप मोटिवेशनल लेक्चर्स कहते हैं, उसमें अक्सर आपको इसी का एक अनुवाद एक अलग तरीके से सुनने को मिल जाएगा। वो ये होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये अक्सर आपको सुनने को मिलता है। और निश्चित रूप से एक नौजवान आदमी, जिस आदमी ही मैं कह रहा हूं, नौजवान भी शब्द मैंने इस्तेमाल किया है जानबूझ करके, जिसकी उम्र 18-20-22 साल की है, जिसे जिंदगी की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, जो थोड़ी बहुत समझ आई है वो सिर्फ किताबों से आई है, और मैं मान करके चलता हूं कि किताबों की समझ का बहुत कम संबंध जिंदगी की समझ से होता है। जिसके पास एक कोमल मन है, जिसकी आंखों में पता नहीं कितने कितने अच्छे सुनहरे सपने पल रहे हैं, जिसके पास बौद्धिकता तो है लेकिन उसके पूरे हार्मोनल इस तरह के उद्वेलित हो रहे हैं, जिसमें इमोशंस का कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो एनर्जी से लबालब भरा हुआ है, ऐसा है वो नौजवान साथी जिसकी उम्र अभी 16 साल से 22 साल के बीच की है, यानी कि वो परिपक्व नहीं है। और जब ये अपरिपक्व मस्तिष्क इस तरह के उद्घोषपूर्ण वाक्य सुनता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं या तुम कुछ भी कर सकते हो, तो यदि वो उस पर 100% यकीन करता है तो कोई गलत नहीं करता, करना ही चाहिए। लेकिन मित्रों, इस पर जो सही समझ विकसित होनी चाहिए वह वहां मिसिंग हो जाती है, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो मैं सच में ये कहना चाह रहा हूं कि मैं जो तुमसे करवाना चाहता हूं तुम वो कर सकते हो। मैं जो करवाना चाहता हूं, मैं आप तुमको खिलाड़ी बनाना चाहता हूं तो तुम खिलाड़ी बन सकते हो, मैं तुमको म्यूजिशियन बनाना चाहता हूं तो तुम म्यूजिशियन बन सकते हो, और मैं तुमको आईएएस बनाना चाहता हूं तो तुम आईएएस बन सकते हो, और मैं तुमको इंजीनियर बनाना चाहता हूं तो तुम इंजीनियर बन सकते हो। तो मैं सीधे सीधे ये ना कह करके कि तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम आईएएस बन सकते हो, तुम इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हो, मैं एक अब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस उसके सामने रखता हूं, एक अस्पष्ट वाक्य उसके सामने रखता हूं और उस वाक्य को वहां से जोड़ता हूं जो हमारी चेतना के आदिम काल से चला आता है, आ रहा है, ब्रह्मास्मि से, और मैं कहता हूं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मित्रों, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई है, मैं इसे झूठला नहीं रहा हूं, निश्चित रूप से थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं और वो ये, आदमी कुछ भी कर सकता है। मैंने थोड़ा सा बदला है, आपकी जगह आदमी, आप कुछ भी कर सकते हैं की जगह मैंने कहा है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। बस केवल ये बदला है, आपकी जगह आदमी। आप और आदमी में फर्क है, बावजूद इसके दोस्तों की जो आदमी है वही आप है और जो आप है वही आदमी है, लेकिन फर्क थोड़ा सा एक है और ये जो छोटा सा फर्क है यही इसका सबसे बड़ा फर्क है। जब मैं कहता हूं आप तो वहां एक आदमी है और जब मैं कहता हूं आदमी तो वहां पूरा का पूरा मनुष्य समूह है, मानव जाति है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक का मतलब है इंडिविजुअल और आदमी का मतलब है कंबाइंड, सामूहिक। इसे आप थोड़ा सा इस रूप में भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। आप यदि मेरे बारे में सोचेंगे तो मेरी अपनी क्षमताएं हैं और वो सीमित हैं। जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो आपकी भी क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन जब पूरी मानव जाति 7 अरब मानव को मिला लिया जाएगा तो उनकी क्षमताएं असीमित हो जाती हैं। तेनसिंग नोरके एवरेस्ट पर चढ़ गए। जब इससे पहले यह माना जाता था कि आदमी एवरेस्ट पर चढ़ ही नहीं सकता, यानी कि आदमी यह नहीं कर सकता, लेकिन तेनसिंग नोरके ने यह करके दिखा दिया, सिद्ध कर दिया कि आदमी कुछ भी कर सकता है। और नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर अपना पहला पैर रखा तो उसने सिद्ध कर दिया कि एवरेस्ट ही क्या, वो चांद पर भी चढ़ सकता है, वो समुद्र को चीर कर उस पर चल सकता है, वो समुद्र में डुबकी लगाकर मीलों की यात्रा कर सकता है, वो हवा में उड़ भी सकता है। उसने सिद्ध किया है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन मित्रों, मुझे सोचना अपने लिए पड़ेगा, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूं? क्या मैं चंद्रमा पर उतर सकता हूं? अब यहां दो चीजें हैं। नंबर एक कि नील आर्मस्ट्रांग जिसने चांद पर पैर रखा, ऐसा नहीं था कि वो पैदा ही इसलिए हुआ था या कि कुछ वो इस तरह से भिन्न पैदा हुआ था कि वो चांद पर भेजने के लिए ही बना हो और इसके बाद इस तरह का कोई आदमी नहीं बनाया गया। नो डाउट कि ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं, यानी कि जो व्यक्ति पैदा होता है वो एक रॉ फॉर्म में होता है, कोई इंजीनियर पैदा नहीं होता, कोई आईएएस पैदा नहीं होता और कोई अंतरिक्ष यात्री के रूप में पैदा नहीं होता। जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो एक अबोध बच्चे के रूप में पैदा होता है, वो अबोध है, उसको किसी चीज का बोध नहीं है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल एक गीली मिट्टी की तरह है, ठीक उस मिट्टी की तरह कि जिस तरह से कुम्हार उस मिट्टी से अलग अलग तरह के पात्र, अलग अलग तरह के बर्तन और वस्तुएं गढ़ता है, वो उस गोल्ड की तरह है, पिघले हुए गोल्ड की तरह है जिसमें से आप चाहे तो कान की बालियां बना लें, उंगली की अंगूठियां बना लें या अपने कमर की करधन बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। तो अबोध बच्चा डेफिनेटली इस तरीके का होता है। अब धीरे धीरे जब वो उस अबोध बच्चे के अंदर बोध डालना शुरू किया जाता है और ये अगायब होता है, तो ये जो बोध है, अब हम उस अ को गायब कर रहे हैं, इस बच्चे को अब परिपक्व बना रहे हैं, ये बच्चे से किशोर बनेगा और किशोर से ये वयस्क बनेगा, इसके बाद फिर वो प्रौढ़ होगा, ये उसकी गतियां हैं, ये उसके चरण हैं। तो ये एक सीमाओं के अंदर ही होगा, ये असीमित नहीं है। नो डाउट कि जब तक वो बच्चा है तब तक वो असीमित है, लेकिन अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो मिट्टी है माता पिता के रूप में, कि मैं इसका क्या बनाना चाह रहा हूं, और यदि उस समय तक डिसाइड नहीं होता है तो बच्चा कुछ समय तक बड़ा होने के बाद ये खुद ये बताने लगता है कि मैं ये बन सकता हूं, ये बनने लायक हूं। जैसे कि मित्रों, हर मिट्टी से हर चीज नहीं बनाई जा सकती। अगर आपको घड़ा बनाना है तो उसके लिए अलग तरह की मिट्टी चाहिए, और अगर आपको ईंटें बनानी है तो उसके लिए अलग तरह के मिट्टी की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि आप रेत भरी मिट्टी से आप घड़ा बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि जो फसल होती है वो जमीन में ही होती है, कोई भी फसल हवा में नहीं होती, उसे मिट्टी चाहिए। लेकिन हर फसल हर मिट्टी में नहीं हो सकती। जैसी मिट्टी होगी फसल उसी तरह की होगी, यानी कि जो मिट्टी है वो प्रकृति की देन है, लेकिन सारी मिट्टियां एक जैसी नहीं है। ठीक इसी तरह से मित्रों, कि अहम ब्रह्मास्मि के साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं इस तथ्य को भी, इस सत्य को भी, और प्रकृति के सत्य को या ईश्वर के सत्य को स्वीकार करके चलना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं का मतलब है हम कुछ भी रच सकते हैं। लेकिन जब ये हम मैं पर आएगा तब मुझे फैसला करना पड़ेगा कि मैं क्या रच सकता हूं। वहां मुझे अपनी स्थितियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, अपनी रुचियों का, अपनी इच्छाओं के आधार पर फैसला करना पड़ेगा। मुझे देखने होंगे कि मेरे पास साधन क्या हैं, और जो मैं बनना चाह रहा हूं, जो मैं करना चाह रहा हूं, उसको करने के लिए, वो बनने के लिए मुझे जो साधन चाहिए, जो जो चीजें, साधन का मतलब केवल मैं बाहरी साधन से नहीं कह रहा हूं कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। यह भी बात है, यह अर्थहीन नहीं है, यह जीवन की सच्चाइयां हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, साधन की जब मैं बात करता हूं तो सीधी सी बात है कि हमारे पास दो तरह के साधन होने चाहिए, और ये दोनों साधन, ये नहीं कि दोनों में से कोई भी होना चाहिए, अनुपात का अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों ही साधन होने चाहिए। एक मेरी आंतरिक शक्ति या आंतरिक गुण कह लीजिए, इंटरनल वर्चूस, और दूसरे हैं एक्सटर्नल मींस, यानी कि मेरे बाहरी साधन। नो डाउट कि कुछ चीजों में बाहरी साधनों की उतनी जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, उसमें शायद बाहरी साधनों की उतनी जरूरत न हो। और अभी तक के हमारे मानव जाति के इतिहास ने इस बात को सिद्ध भी किया है कि उसमें उनकी इतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बाहरी साधन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मान लीजिए कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए फीस जुटाने की स्थिति होनी ही चाहिए। कोई विदेश से पढ़ करके आना चाहता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कुछ इकोनॉमिक्स में करना चाहता है, या कोई एमएटी में जाकर के पढ़ना चाहता है, एमआईटी में जाकर के पढ़ना चाहता है, तो वहां फिर करने के लिए उसके पास उतना धन होना चाहिए। तो ये जो आंतरिक वर्चूज और आउटर मींस, इंटरनल वर्चूज एंड आउटर मींस, ये वो चीजें होती हैं फिर जो इस बात का निर्धारण करती हैं कि मैं जो करना चाह रहा हूं, मैं जो रचना चाह रहा हूं, वो यथार्थ के कितने निकट है। यदि मेरा चाहना, जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, यदि मेरा रचना, जो मैं अपने लिए चुन रहा हूं, यदि वो यथार्थ के निकट नहीं है, मैं बिल्कुल यथार्थ की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं जानबूझकर निकट शब्द का उपयोग कर रहा हूं, यानी कि वो चीज हमारे पास बिल्कुल ज्यों की त्यों 100% हो ही, लेकिन हम कम से कम उसके निकट तो हों, उसके आसपास तो हों। यदि उसका बहुत जबरदस्त फासला होगा और इतना अधिक फासला होगा कि जिसे पाटा ही न जा सके और पाटने के कोई दूसरे उपाय भी न हो, तब फिर ये जो रचने का काम है, ये जो पाने का काम है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच पूछिए तो ये बहुत असंभव सा भी मालूम पड़ने लगेगा, क्योंकि हमने जो भी फैसला किया वो एक तरीके से अपनी कल्पनाओं के आधार पर किया। और मुश्किल बात मित्रों यहां ये है कि मेरी जो कल्पना थी वो भी एग्जैक्ट मेरी कल्पना नहीं थी, इस कल्पना का भी निर्माण किसी दूसरे ने किया है, वो जो कल्पना की जो तस्वीर बनी है वो तस्वीर मेरे हाथ ने अपनी कूची लेकर के नहीं बनाई है, बल्कि किसी दूसरे हाथ ने कूची लेकर के मेरे दिमाग को कैनवास की तरह इस्तेमाल करते हुए और वो तस्वीर बना दी है। और मुझे लगने लगता है कि नहीं, यही मेरी कल्पना है, ये मेरा इमेजिनेशन है, ये मेरी दुनिया है, इसे मैंने रचा है, जबकि सच्चाई में ऐसा नहीं होता। आप सोच करके देखिए कि हम सब, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप सब जब भी अपने कैरियर के बारे में कुछ भी करने के बारे में फैसला करते हैं, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि वो जो आपका फैसला है, उस फैसले में वो कौन है जो मॉडल के रूप में मौजूद है। कोई ना कोई मॉडल के रूप में मौजूद होगा। मैं यहां मॉडल को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, प्लीज इसको समझने की कोशिश करें, मैं इसे गलत भी नहीं मान रहा हूं। कोई ना कोई हमारा आदर्श होता ही है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो किसी घटना के रूप में हो, चाहे हमारी किसी जरूरत के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। हमारे मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स का होना एक अच्छी बात है, लेकिन हम मॉडल्स को तो देखते हैं, वहां हमसे गड़बड़ी ये हो जाती है कि हम उस मॉडल्स के पास जो इंटरनल वर्चूज थे और जो एक्सटर्नल मींस थे, हम उसको नहीं देख पाते, हम उसको अपना आदर्श बना लेते हैं। लेकिन उस आदर्श को लेकर जब कुछ करने की बात आती है, चलने की बात आती है, तो वहां कहीं ना कहीं फिर हम अपनी अपंगता महसूस करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अब दो ही तरीके हैं कि जब हमने चलना शुरू कर दिया है तो अपनी वो जो कमजोरी या जिस जो कमी जो हम महसूस कर रहे हैं, या तो हम उसे दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बिना फिर बात बनेगी नहीं, वो रचने का काम पूरा नहीं हो सकेगा, पाने का काम पूरा नहीं हो सकेगा, पहुंचने का काम पूरा नहीं हो सकेगा, या फिर अगर हमको लगता है कि नहीं, ये कमी पूरी नहीं की जा सकती, तो हम इस सत्य को स्वीकार करें और अपने रास्ते को बदलें। मित्रों, ये जो रास्ता बदलने की बात है, मुझे मालूम है कि इसे बहुत लोग स्वीकार नहीं करते हैं और इसे एक कायराना, एक कायर, जैसे कि बहुत ही कोई कायर के द्वारा उठाया गया कदम मान लेते हैं। मित्रों, हम एक लड़ाई के क्षेत्र में नहीं है जहां हमें शहीद ही होना है। सच यह है कि वहां शहीद हो जाना, भागने से ज्यादा सफलता शहीद होने में ही है, क्योंकि वो काम ही शहीद होने का है, या तो शहीद होने का है या दूसरों को शहीद करने का है। वहां तो अंतिम परिणाम ही शहीद होना है, होना या दूसरे को करना। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। जीवन को आप शहीदाना अंदाज में मत देखिए। यहां जो हम शहीद शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है सिर्फ समर्पण से। लेकिन अगर एक समय के बाद आपको लगता है कि यह बहुत रेतीली जमीन है और इस रेतीली जमीन पर गुलाब की खेती नहीं हो सकती, आपने अनुभव करके देख लिया है, तो क्या विवेक का यह तगाजा नहीं है कि आप खेती करना मत छोड़िए, लेकिन गुलाब को छोड़ दीजिए। वहां नागफनी की, कैक्टस की बहुत खूबसूरत खेती हो सकती है और प्रकृति ने उसे भी पैदा किया है और इस धरती को उसकी भी जरूरत है। तो मित्रों, खासकर आज के इस ऑडियो गाइडेंस में मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, और आप नौजवान साथियों के माध्यम से, सच पूछे तो मैं सभी से ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि हम सब यथार्थवादी बने। चीजों का मूल्यांकन करने के लिए, मूल्यांकन करके उस पर फैसला लेने के लिए, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सिर्फ कल्पना और भावनाओं का सहारा लेकर उसके हाथ में अपने जीवन को न सौंपे। लेकिन मित्रों, ये विषय लंबा है, मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है कि ये जो ऑडियो जब आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में कुछ खलबलियां मचेंगी और उन खलबलियों से कुछ सवाल भी शायद खड़े हों, तो फिर इसका उत्तर क्या है, फिर हम क्या करें, आगे कहां जाएं, क्योंकि इस ऑडियो में आप आगे कहां जाएं, या वो कौन से टूल्स होंगे जो सही मायने में, जिनका इस्तेमाल करके आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे या विवेक के आधार पर निर्णय ले सकेंगे, उसकी चर्चा मैंने इसमें नहीं की है। लेकिन निश्चित रूप से आगे के ऑडियो में हम इनकी भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे इस बात के लिए माफ कीजिएगा कि जो आपका शांत मन था, उसमें कहीं ना कहीं मैंने एक कंकड़ी उछाल दी है और आपका मन थोड़ा सा अशांत सा हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे यह भी लगता है दोस्तों कि यदि सच में मैं ऐसा कर सका तो हो सकता है कि जैसे ऑपरेशन होता है तो उस समय तकलीफ होती है, लेकिन बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और अगर बीमारी दूर हो गई तो डॉक्टर हमारी कृतज्ञता का पात्र बनता है। शायद कुछ समय के बाद वही बात मेरे साथ भी हो, बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। अब इजाजत चाहूंगा, सोचिए, इस पर विचार कीजिए, बहस कीजिए, अपने बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिए। आप देखेंगे कि रास्ता है, जो भी रास्ता है, अगर वो हमारा है, हमारे लिए है, तो विश्वास कीजिए कि वहां जो मंजिल आपका इंतजार कर रही है वो बेहतर ही होगी, क्योंकि वो मंजिल भी आपके लिए ही बनी है और आपकी ही है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।